महाबंध पुस्तक पहली लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आययानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहे सवसाहुं। भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्वप्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक द्वारा प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है। ये षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है और उसमें जो 7 पुस्तक है उसमें से ये पहला जो पुस्तक है उसमें प्रथम अधिकार जो प्रकृति बंध अधिकार है। इसमें तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की चर्चा है। उसमें से हमने प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृतियों के नाम देखे थे। अभी बंध स्वामित्व विचय की चर्चा चल रही थी। पृष्ठ संख्या 49 पर हम आए थे। पहले हमने ओग में देखा, फिर नारकियों में और तिरियंचों में देखा, उसके बाद यहाँ से त्रुटित अंश शुरू हुआ था। इसके लिए हमने जो गत समय जो निकाले थे इसके तो मैंने 8वीं पुस्तक के आधार से लिख लिया है बंध स्वामित्व विषय, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने वो सुमेरु चंद जी दिवाकर ने जो कर्मकांड के आधार से लिखा है वो पढ़ा था, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। परंतु बंध विषय की जो स्टाइल है जो 8वीं पुस्तक में है उसके आधार से यहाँ हम देखेंगे। तो ये बंध स्वामित्व विषय आपकी जो 5 त्रुटित अंश की पुस्तिका है उसका 3 नंबर का पेज है। कल हमने ये 2 नंबर के पेज पर बंध स्वामित्व विषय देखा था ना, उसमें जो द्विस्थानिक के ब्रैकेट में पहले 2 गुणस्थानों में बंधने वाले यानी दूसरे गुणस्थान में बंधने जो दूसरे में बनती वो पहले दोनों गुणस्थान में बनती है, यानी एक्चुअली वो ठीक है क्योंकि जो दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है ना वो पहले दूसरे दोनों में बनती है, ये उसका अर्थ है। यानी वो ब्रैकेट में कल हमने जरा सुधारा किया था पर वो बराबर है, यानी वो अकेले दूसरे में बंधने वाली नहीं है प्रकृति, पहले दूसरे में बंधने वाली है और उसकी विच्छित्ति दूसरे में होती है।
तो पहले
हाँ हाँ रखना जैसा है वैसा ही रखना। और नीचे से जो 5वीं लाइन है ना वहां विकलेंद्रिय हुआ, विकलेंद्रिय करना, उसको ल हुआ है ले करना। हमने औदारिक मिश्र तक पढ़ा था। अब यहाँ 3 नंबर के पेज पर वो तीसरा पैराग्राफ जो है वैकृत कायोगी वहां से पढ़ेंगे हम। देखो ये कैसे पढ़ना था, हमने जैसे ओग में कैसा देखा था, पहले ज्ञानावरण की बात करेंगे। तो 5 ज्ञानावरण पहले से 10वें तक बनती है, उसी के साथ बनने वाली कौन सी पहले से 10वें तक, तो 4 दर्शनावरण है, 5 अंतराय है, यश कीर्ति है, उच्च गोत्र है, तो उस कब की प्ररूपना हुई, सातावेदनीय भी, पर सातावेदनीय की बात अलग से बताएंगे क्योंकि वो 13वें तक बनती है। उसके बाद दर्शनावरण की 4 ही ली थी तभी, उसमें से स्थान वृद्धि वगैरह वो पहले और दूसरे गुणस्थान में बनती है, तो उसके साथ जो पहले और दूसरे में बनने वाली सभी प्रकृतियों का ग्रुप बता दिया उसको कहेंगे स्थान वृद्धि दंडक। उसके बाद अभी निद्रा प्रचला रचे बाकी रही थी तो 8वें तक बनती, 8वें के पहले भाग पर। इस तरह से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, इस क्रम से सभी प्रकृतियों की बात हमने देखी थी ओग में। अब यहाँ हम वैकृत कायोगियों में देखेंगे। वैकृत कायोगियों की प्ररूपणा देवगति के समान है, नरगति के समान इसलिए नहीं कहा क्योंकि देवगति में तो एकेंद्रिय का भी बंध है, तो वो जैसे हमने देवगति में गुणस्थान कितने हैं तो चार है, तो इसमें चारों ही गुणस्थानों में बंधने वाली प्रकृतियों को पहले कहेंगे। जैसे पांच ज्ञान आवरण है और छह दर्शन आवरण है, पांच अंतराय है, वेदनीय दोनों ही वेदनीय है, इस तरह से उसका विचार करना। तो वो बांधने वाले कौन है, तो पहले से चौथे तक सभी है, यानी सभी वो वैकृत का योग वाली सभी उसको बांधने वाले, ये उसका अर्थ होता है। फिर उनके लिए भी वो स्थान वृद्धि का दंड का अलग से बताना है, ख्याल में है? और मिथ्यात्व का दंड के उसमें एक केंद्रीय स्थावर आतप तक ही लेना है, मिथ्यात्व की वो 16 प्रकृतियां नहीं लेना है, जो बनती है उसमें से जो वो बांधने वाले कौन है उसकी बात लेना है। अभी वैकृत मिश्र का योगियों की प्ररूपणा देवगति के समान है, वैक्री यकी हुआ है, अच्छा वैक्रीयिक यकी हुआ, वो यिक करना, देवगति के समान है। विशेषता क्या होगी, देखो वैकृत मिश्र में कौन सी प्रकृतियां नहीं बंधेगी, तो आयु नहीं बंधेगी, तो यहाँ मनुष्यायु और तिर्यंचायु का बंध नहीं है। और वैकृत मिश्र में गुणस्थान कौन कौन से हो गए, पहला दूसरा चौथा, ये उसकी विशेषता है। अब आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों में प्रमत्त संयत बंधक है, शेष जीव अबंधक है, ये योग वाली बात है। उसका आहारक का बंध कौन करा है वो नहीं पूछ रहे, आहारक का योगी जीवों में, यानी आहारक का योग किसके होता है, छठे गुणस्थान वाले को, तो वही बंधक है, बाकी कोई बंधक नहीं है। और वहां जो बंधने वाली प्रकृति है उसको हम लिखेंगे। जैसे आहारक का योगियों में अभी हमको लेना है तो पांच ज्ञानावरण है, छह दर्शनावरण है, पांच अंतराय है, अभी छठा गुणस्थान है, तो साता साता दोनों को लेना पड़ेगा। यहाँ देवगति बंधेगी, हाँ आहार को तो नहीं लेना, ये नहीं यथायोग्य जो प्रकृति, कौन बंधक है, तो छठे बंधक तो एक ही गुणस्थान है ना, जो बनती है उसी को लेना है उनको। आहारक शरीर का बंध यहाँ नहीं होता, छठे गुणस्थान में बंधने वाली प्रकृतियों को लेना है। यहाँ पर संज्वलन चारों बंधेगी, पुरुषवेद बंधेगा, इस तरह से हमको सोचना है। यानी हमने पहले ज्ञानावरण की पांचों बंधेगी, हम आहार का योगी की बात देख रहे हैं लक्ष्मी, तो उसके बंधक कौन है, तो प्रमत्त संयत, पर वो क्या क्या बांध रहे हैं, तो पांच ज्ञानावरण बांध रहे, दर्शनावरण की कितने बांध रहे हैं, छह, क्योंकि छठे गुणस्थान में है। वेदनीय की कौन सी बांध रहे हैं, दोनों ही, साता भी और असाता भी। अब मोहनीय की कौन कौन सी बांध रहे हैं, छठा गुणस्थान, संज्वलन चार, पुरुषवेद और किसी के हास्य रति बंधेगी, किसी के शोक रति बंधेगी, क्योंकि उसके अभी बंध विच्छित हुई नहीं है ना, वहां तक छठे में दोनों है, यानी दोनों युगल भय जुगुप्सा तो निरंतर, यानी ध्रुव बंधी है। ख्याल में नहीं कैसे सोचना है हमको, ये हो गया हो गया। अभी आयु यहाँ बनती है कि नहीं बनती है, देवायु बंधेगी। वैसे आहारक मिश्र में मरण नहीं है और आयु बंधन है, ऐसे दो दो मत आते हैं उसके बारे में। महाबंध में उसका मरण स्वीकार है, तो आगे चलकर उसके बात आने वाली है बंधने वाली प्रकृतियों की, या सन्निकर्ष वगैरह आने वाला है। अब कौन सी रहेगी, आयु की बात हो गई, नाम में से अभी देवगति के साथ जो बंधने वाली प्रकृतियां होती है उसमें आहारक आहारक मिश्र छोड़कर बाकी का बंध होगा। देवगति सहित 29 का बंध हो सकता है, तीर्थंकर का भी बंध हो सकता है। यहाँ पर गोत्र में से तो उच्च गोत्र बनता है, होगी ना, आयु नाम गोत्र अंतराय को तो बता ही दिया। इस तरह से सोचना है कि आहार ये काय योग वाले हमारी मार्गणा है, तो ये काय योग कहाँ होता है, तो छठे में, तो छठे गुणस्थानवर्ती बंधक है, बाकी अबंधक है। कौन सी प्रकृतियां, तो वहां बंधने वाली सब, आगे बढ़ेंगे। कार्मण का योग में देखो, कार्मण का योग कहाँ होता है? पहले ब्रह्मा विग्रह गति में होता है, सहयोगी को भी होता है, परंतु वहां तो केवल एक सातावेदनी बंधेगा। तो यहाँ विग्रह गति के गुणस्थान बताने आपको, हाँ पहला दूसरा और चौथा, उस हिसाब से हमको यहाँ देखना है। तो कार्मण का योग में पहला दूसरा और चौथा गुणस्थान है, यहाँ आयु का बंधन नहीं है, एक बात, कोई भी आयु बनती नहीं यहाँ पर। और देव गति में जो ज्ञानावरण आदि का भंग बताया, उसके बंधक पहले दूसरे चौथे गुणस्थान वर्ती है। ज्ञानावरण आदि में हमने देखा ना, चौथे गुणस्थान तक क्या क्या बनता है ज्ञानावरण आदि में से? पांच ज्ञानावरण है, चौथे वाला है तो छह दर्शनावरण है, इस तरह से हमको सोचना है। यानी एक होगा ज्ञानावरण का दंडक, यानी पहले दूसरे चौथे सब बांधते हैं, ऐसा होगा। स्थान वृद्धि दंडक में पहले और दूसरे गुणस्थान वर्ती बांधेंगे, उसमें आयु नहीं बांधेंगे, यानी तीरियंच आयु बिना देव गति के समान है। और मिथ्यात्व दंडक नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी नरकायु बिना मनुष्य तीरियंचों के समान है, क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थान सहित मनुष्य तीरियंच में भी आने वाले जीव है। तो पहले गुणस्थान वाले वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वगैरह वगैरह का भी बंध करेंगे, इसलिए उसको भी ले लेना। ख्याल में है कैसे सोचना है? देखो देखो, अपर्याप्त अवस्था में नरक गति नहीं बनती है, वो पूर्ण छह पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात ही बन सकती है। कार्मण का योग में नरक गति का बंध किसी को नहीं होगा। अब देवगति का भी नहीं होता, पर सम्यक दृष्टि होगी तो बांध सकते हैं, इसलिए उसको तो हमने देवगति के साथ वैसा ले लिया था, चौथे गुणस्थान तक बंधने वाली में लिया था उसको। देवगति पंचक के अभी ये कार्मण का योगियों में ही बात चल रही है, तो उसमें देवगति पंचक यानी देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रेक वैक्रेक अंगुपम और तीर्थंकर, उसको देवगति पंचक कहेंगे। आपको लिखना है तो लिख लो वहां पर। हाँ कौन सा, किसका बंध? नरक गति का, कार्मण का योग है, औक्षायिक समय तो चौथा गुणस्थान है। हाँ तो प्रश्न क्या है? नहीं, पर वो नरक गति थोड़ा ही बांध रहा है नार के, मनुष्य गति समय दृष्टि नार की है ना, अपने सम्यक्त के साथ नरक में जाने वाला पहले नरक, तो कार्मण का योग है ना विग्रह गति, उसकी नरक गति चालू हो गई। नारकी तो नरक गति नहीं बांधेगा, और समय दृष्टि है तो देव गति सॉरी मनुष्य गति को ही बांधेगा, है ना? देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रेक वैक्रेक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति। अंगोपांग है, परंतु अंगोपांग भी लिखा है बहुत जगह, पर उसका सही शब्द अंगोपांग है, क्योंकि हमने भी सब जगह अंगोपांग ही लिखा था। यानी देव द्विक वैक्रिक द्विक और तीर्थंकर। नहीं, देखो देखो क्यों ये कहा कि उच्च गोत्र का बंध तो मनुष्य गति के साथ भी होगा, मिथ्या दृष्टि भी बांधेगा। ये कौन बांधेगा? ये तो सम्यक दृष्टि ही बांधेगा, पहले दो गुणस्थान वाले नहीं बांधेंगे। कार्मण का योग में देवगति कौन बांध सकता है? सम्यक दृष्टि, वो भी सम्यक दृष्टि कौन सा सम्यक दृष्टि? ये पंचक वाला लिया, मनुष्य में आने वाला। वैसे भूमि वाला तीरंज देवगति बांधेगा, पर पंचक यानी तीर्थंकर प्रकृति वो नहीं बांधेगा। तो कार्मण का योग में कब लेना?
मनुष्य में आया हुआ चीज,
हाँ, देव में जाने वाला मनुष्य के साथ तीर्थंकर बांधेगा, और देव में से जो मनुष्य में आया है अभी माँ के गर्भ में आने वाला है, वो देवगति पंचक का बंद करेगा? फिर से नहीं समझेगा तो फिर पूछना है। फिर से तीर्थंकर को लेकी बात है ये। और ऐसे भी कारमान का योग में देवगति कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि नहीं बांध सकता, सम्यक दृष्टि ही बांधेगा। तो सम्यक दृष्टि बांधेगा तो वो देवगति के साथ बांधेगा तीर्थंकर को आने वाला, या नारकी में से मनुष्य में जो आया है अभी गर्भ में आने वाला है, नहीं तो विग्रह गति में है। हाँ, देव से नरक से, उसकी अभी नरक गति देवगति छूट गई है, अब वो मनुष्य गति का हो गया है। हाँ, वो मनुष्य गति का हो गया है, तो मनुष्य गति का सम्यक दृष्टि जो इसको बांध रहा है। अभी साता वेदनीय के, यानी कारमान का योग में साता वेदनीय को बांधने वाले चार गुणस्थान होते हैं क्या कारमान का योग में? हाँ, एक दो चार और तेरह, हाँ ऐसे चारों ले सकते हैं बराबर। तो कहते मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, साधारण गुणस्थान, असंयत और सहयोग केवली, वो बंधक है अबंधक नहीं है। यानी सभी चारों ही गुणस्थान, कौन से चार? पहला, दूसरा, चौथा और तेरवा। ये हमारा कारमान का योगी की मार्गणा हो गई। अब वेद मार्गणानुसार देखो, वेद मार्गणा के अनुसार भेद कौन कौन से हो गए? स्त्री वेदी हो गए, पुरुष वेदी हो गए, नपुसक वेदी हो गए और अपगत वेदी भी हो गए। नहीं हो गया कारमान, अभी वेद मार्गणा चल रही है। यानी हमें कैसे सोचना है अभी जरा बराबर। तो वेद मार्गणानुसार स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुसक वेदी जीवों में ओघ के समान भंग है, इतनी विशेषता है। अभी विशेषता क्या कहेंगे? वेद मार्गणा में इन तीन वेद वालों में नवे गुणस्थान तक लेना पड़ेगा, उसके पहले भाग तक। पहले से वहां तक वो ज्ञानावरण दंड का अलग बताएंगे, स्थान वृद्धि दंडक बताएंगे, निद्रा प्रचला की बात अलग बताएंगे, तो हम देखेंगे। अभी इतनी विशेषता है कि पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष वेद, क्योंकि वेद मार्गणा है, जब तक वेद का उदय तब पुरुष वेद का बंध भी है। पुरुष वेद, यश कीर्ति, उच्च गोत्र, पांच अंतराय के, मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक शपक तक बंधक है अबंधक नहीं है। ये तो आसान है ना समझने के लिए। ओग में हमने दसवें गुणस्थान तक देखा था अपन, वह दसवें गुणस्थान वो तो वेद और वो उसको नहीं लिया था संज्वलन वगैरह को, तो यहाँ नवे तक बनने वाली सभी प्रकृतियां यहाँ तक ले सकते, पहले से नवे तक, वो औपशमिक हो या सॉरी क्षपक हो या उपशमक हो। ब्रह्मा ख्याल में आती बात? नहीं तो और भी स्लोली जाएंगे। क्यों लक्ष्मी, इतना ठीक है? हाँ, नहीं समझे तो फिर रिपीट करेंगे हम। अब अपगत वेदियों के गुणस्थान आपको बताना है ब्रह्मा। आप शांति रखो, बिल्कुल मौन रखो। ये जो लाउड स्पीकर है वैसे उनको कुछ दूसरा कुछ बताओ कि बाहर शब्द नहीं सुनाई दे। हाँ बोलो बोलो, नवे का रिमेनिंग है ना, थोड़ा नहीं पहले, हाँ उसका यानी पहले दूसरे भाग से लेकर, हाँ फिर आगे के चौदहवें तक सारे अपगत वेदी है। अब उसमें देखेंगे, हमारी मार्गणा अपगत वेदियों की है। तो अपगत वेदियों में पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अंतराय के अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रायिक उपशमक व क्षपक बंधक है, शेष अबंधक है। क्योंकि वो भले वो ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, चौदहवें को अबंधक में जा डालेंगे। साता वेदनीय के अनिवृत्तिकरण के से संयोग केवली तक बंधक है, शेष अबंधक है। साता वेदनीय के लिए अबंधक में केवल चौदहवें गुणस्थान को डाला, बाकी सारे बंधक है। चार संज्वलन के अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बंधक है, शेष अबंधक है। ये अपगत वेदी है इसलिए यहाँ वेद का बंध होने का सवाल नहीं है। उच्च गोत्र भी यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ हाँ हाँ एक मिनट। अपगत वेदी में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यश कीर्ति और उच्च गोत्र भी डालो वहां पर। यश कीर्ति और उच्च गोत्र, जैसे हमने ओग में देखे थे ना, ओग में जो हमने देखा था, हाँ, जो 10वें तक बंद है उसको सबको यहाँ लेना पड़ेगा। पहले यश कीर्ति उच्च गोत्र और फिर 5 अंतराय को लेना है। क्योंकि ऑर्डर से लिखना है तो वहां लिखना पड़ेगा, अंतराय लास्ट में रखना है। 4 दर्शनावरण के बाद यश कीर्ति उच्च गोत्र। और 5 अंतराय तो लिखा ही हुआ है। यानी अपगत वेद के अनिवृत्तिकरण भाग से लेकर सूक्ष्म सांप्राय तक बंधक है। साता वेद नियम में वहां से लेकर संयोग केवली तक, और 4 संज्वलन को अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बंधक है, शेष अबंधक है। अभी एक एक कितने भाग तक रहता है वो तो सामान्य कथन, अनिवृत्ति तक उसके बंधक, अनिवृत्ति वाले बंधक। समझ में आई बात ये? अभी आगे बढ़ते हैं। कषाय मार्गणा में देखो, कषाय मार्गणा के भाग कौन से? क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय और अकषाय। डिफरेंस कहाँ होगा? देखो, क्रोध मान माया में वो ज्ञानावरण दंडक है, वो 9वें तक कहेंगे, और लोभ कषाय में हम 10वें तक कहेंगे। अभी हम 4 नंबर के पृष्ठ पर पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल से अगर इसके साथ साथ अगर हम उनकी प्ररूपना पढ़ते हैं ना जरा, तो हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको भी बल मिलेगा, और फिर बाद में वही विषय फिर हमको पीछे से लेना नहीं पड़े। 49 पेज निकालना धौला की। हमने मनुष्य गति वगैरह में डिराइव कर दिया था, अभी हम आगे के मार्गणाओं में आ गए। हाँ, महाबंध निकालो, क्योंकि यही विषय कर्मकांड के आधार से उन्होंने समझाया है। जो हम यहाँ चर्चा करें ना, ऐसा क्यों वगैरह, वो और क्लियर हो जाएगी। कल हमने अपनी ओर से मनुष्यों में, देव में वगैरह सब बताया था, अभी यहाँ तब तक हम पढ़ते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे बाद में। हम कषाय मार्गणा तक आए ना, अभी पढ़ा नहीं है, वहां तक पहले पढ़ लेते। 49 पेज निकालना महाबंध पुस्तक 1 की। वो आपकी पुस्तक जरा बाजू रखना, दूसरा स्टैंड हो तो ले लेना। देखो पढ़ते हैं ये। ये हमने विशेष लिखा है ना, वहां तक पढ़ा था, और उसके नीचे क्या लिखा है? ताड़ पत्र नष्ट हो जाने से इस प्रकरण का आगामी विषय नष्ट हो गया है। ग्रंथ के प्रकरण से ज्ञात होता है कि आचार्य महाराज ने मनुष्य गति आदि मार्गणाओं की अपेक्षा बंध सामित्य विषय प्ररूपणा का वर्णन दिया होगा। संबंध मिलाने की दृष्टि से श्री गोमरसार कर्मकांड के आश्रय से कुछ प्रकाश डाला है। हमने तो डायरेक्ट बंध विजय स्वामित्व की जो प्ररूपणा 8वें पुस्तक में, उसी के आधार से और इनकी जो लिखने की स्टाइल है उसके आधार से यहाँ बताया था। अब देखो यहाँ मनुष्य गति, ये हमने कल देखा था पूरा। यहाँ मिथ्यात्वादी 14 गुणस्थान है। पहले कैसे सोचना यहाँ गुणस्थान कितने हैं और उसमें बंधक अबंधक कैसे हो सकते हैं। बंध योग्य 120 प्रकृतियां हैं। यहाँ का वर्णन ओघवत जानना चाहिए। विशेष यह है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर आहारद्विक का बंध न होने से शेष 117 प्रकृतियों का बंध होता है। ये ओग में भी ऐसा ही है ना, उसमें कोई विशेषता ही नहीं, परंतु उन्होंने इन जनरल बात यहाँ बता रहे। सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्वादी 16 प्रकृतियों का बंध न होने से बंध 101 का होता है। मिश्र गुणस्थान में 69 का बंध होता है, क्योंकि 25 और 16 नहीं बन रही है और आयु भी नहीं बन रही। ये बंध स्वामित्व विषय की प्ररूपणा कैसे देखें, हमने ज्ञानावरण का कहां तक होता है, कौन बंधक है कौन अबंधक है, उसको समझने के लिए उन्होंने कहा किसका बंध होता है उसकी चर्चा उठाई। किसमें तीसरे मिश्र, पहले नरकायु तो पहले में ही चली गई, तीर्यंचाई दूसरे में चली गई, अब मनुष्य और देवायु जो बन सकती थी, क्योंकि तीसरे गुणस्थान वाले मनुष्य तीर्यंच है, वो देवगति का बंध करे पर आयु नहीं बांधेगी, और देवनार की तीसरे गुणस्थान वाले मनुष्य तीर्यंच सॉरी मनुष्य गति का बंध करेंगे परंतु आयु नहीं बांधेंगे, तो दो आयु को वहां छोड़ना पड़ता है। जो चौथे गुणस्थान में फिर उनको लेना है, पर मनुष्य गति में उसको नहीं लेना। मनुष्य गति की बात चल रही है ना, मनुष्य गति में क्या है, तो मनुष्य गति में सासादन वाला ही वो जो हाँ वो 25 के साथ और 6 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति मनुष्यों के लिए होती है। नीचे से चौथी लाइन, यहाँ सासादन गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होने वाली अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। यहाँ इन्हें मिश्र गुणस्थान में स्वर है। इसके सिवाय मनुष्य गति द्विक, मनुष्यायु, वज्रषभ नारा सहनन, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, इन 6 प्रकृतियों की भी सासादन गुणस्थान में बंध विच्छित्ति, ये मनुष्य है इसलिए ये 6 प्रकृतियां उसके दूसरे तक ही बन सकती है। साधारणतया इनकी अविरत में बंध विच्छित्ति, साधारणतया ने ओग में, परंतु वो देवनारकी की अपेक्षा उनको बताया था। मिश्र गुणस्थान में पेज नंबर 50 पर आना, आयु का बंध न होने से देवायु का अबंध हो गया, यानी वो एक गुणस्थान के लिए अबंध हुआ, फिर चौथे गुणस्थान में उसका बंध होगा। इस प्रकार 32 प्रकृतियों के घटाने से मिश्र गुणस्थान में 69 प्रकृतियों का बंध होता है। अविरत सम्यक्ति के देवायु तथा तीर्थंकर का बंध प्रारंभ हो जाने से 71 का बंध होता है, तीसरे में 69 का था या 71 का होगा। अप्रत्याख्यानावरण 4 का देश विरति में बंध न होने से यहाँ 67 प्रकृतियों का बंध होता है। ये मनुष्य की मार्गणा चल रही है, उसमें मनुष्यायु कैसे आएगी, उसको हमने दूसरे में निकाल दिया। हाँ ओग में आप बता रहे, प्रमत्त गुणस्थान में अप्रमत्त की बात पढ़ी थी ना, देश विरत के हो गए थे 67 का। प्रमत्त गुणस्थान में 63 प्रकृतियों का बंध है, यहाँ प्रत्याख्यानावरण 4 का बंध नहीं है। अप्रम अभी हमने गिनाई थी ना, अभी 5 ज्ञानावरण वगैरह 6 दर्शनावरण, यानी आहार का योग में हमने चर्चा की थी उसकी। अप्रमत्त संयत के अस्थिर, असाता, अशुभ, अरति, शोक, अयशस्कृति, इन 6 का बंध नहीं होगा, परंतु यहाँ आहार द्विक का बंध होने से 59 का बंध होता है। वो 63 था, उसमें से 4 गए और 1 आया। हाँ हाँ, मैं उसमें से प्रमत्त की बात देख रही थी। हाँ आहार द्विक, तो 4 का डिफरेंस पड़ गया वहां पर। अपूर्व करण में 58 का बंध है, कारण यहाँ देवायु का बंध नहीं होता। देवायु की बंध विच्छित्ति अप्रमत्त गुणस्थान में हो जाती है। अनिवृत्तिकरण में बंध योग्य 22 है, कारण अपूर्वकरण गुणस्थान में, अपूर्वकरण और गुणस्थान में कौमा है वो नहीं चाहिए। हमने देखा ना वह निद्रा प्रचला पहले भाग में, फिर 30 और फिर 4, टोटल 36 चली जाती। निद्रा प्रचला, तीर्थंकर, आहार द्विक आदि कुल 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाने से 22 प्रकृति ही बंध के लिए शेष रहती है। अब सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में 17 का बंध होता है, कारण अनिवृत्तिकरण में पुरुष वेद तथा 4 संज्वलन कषायों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। अभी वो 17 बनती थी, उसमें से 16 की बंध विच्छित्ति हो जाएगी ना। उपशांत कषाय में केवल एक सांता वेदनी का ही बंध होता है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यश कीर्ति तथा उच्च गोत्र की बंध विच्छित्ति हो जाती है। क्षीण कषाय तथा सयोगी जिनके एक सांता वेदनी का ही बंध होता है, अयोग केवली के बंध नहीं है, कारण वहां बंध के हेतुओं का अभाव हो चुका है। सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी में मनुष्य गति के समान भंग है। ये हमने उसके ऊपर से बंध विषय की भाषा में हमने सब डिराइव किया था, कल पढ़ भी लिया था। अब लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य में, वो हमने सभी जो पंचेंद्रियों की, उन्होंने पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक की प्ररूपणा की थी, वैसे सभी में है ऐसा हमने देखा था। तो कहते तीर्थंकर, आहार द्विक, देवायु, नरकायु तथा वैकृत षटक, इन 11 प्रकृतियों को बंध के अयोग्य कहा है। अतः उसके 109 प्रकृति का बंध होगा, इसके केवल मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। यानी वो मिथ्या दृष्टि उसके बंधक है और अन्य कोई गुणस्थान ही नहीं उसमें, बंधक नहीं है ऐसा कहेंगे हम, क्योंकि उनमें गुणस्थान एक ही होता है। बंध विचय की भाषा कैसी है, लब्धि पर्याप्त मनुष्य है, तो यहां जो इतनी बंधने वाली है वो मिथ्या दृष्टि उसका बंधक है, अबंधक नहीं है। अब निवृत्ति अपर्याप्त मनुष्य में उन्होंने उसका भी एक भेद बताया, क्योंकि जब निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे तो गुणस्थान क्या हो गए, एक दो और चार, तो 4 आयु, नरकद्विक तथा आहारकद्विक, इन 8 प्रकृतियों को बंध के अयोग्य कहा है, इसलिए उसके 112 बंध योग्य है। यहां मिथ्यात्व, सासाधन, असंयत, प्रमत्तता, संयोग केवली गुणस्थान होते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त इसलिए ली गया उसमें क्योंकि वह औदारिक मिश्र का योग होता है कपार समुद्रात में। हाँ, उसकी फिर पर्याप्तियां होती है वहां पर। देवगति, यहाँ सूक्ष्मत्रय, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, विकलत्रय यानी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, सुर चतुष्क, नरक द्विक, सुर चतुष्क समझते ना, देवगति देवगत्यानुपुरी, वैकरेक वैकरेक अंगुपा, नरक द्विक नरकायु देवायु, आहारक द्विक, इन 16 प्रकृतियों का बंध न होने से बंध योग्य 104 कही है। वो 104 भी बहुनत्रिक और सौधर्म ईशान में बताएंगे, ऊपर वो एक केंद्रीय संबंधी नहीं बंधेगी तो 101 कह देंगे इस तरह से। ऊपर तिरियंज गति वगैरह भी सदर चौक वाली नहीं बंधेगी इस तरह से, कहां कौन सी बनती है। हाँ देखो फिर से, और बहुनत्रिक में तो 104 भी नहीं बंधेगी, तीर्थंकर भी नहीं बंधेगी वहां पर। देवगति में मिथ्यात्वादी 4 गुणस्थान होते हैं, बहुनत्रिक तथा कल्पवासी स्त्रियों में तीर्थंकर का अभाव होता है, यानी भवन तीये नत्थि तीर्थयरम कपित थीसो न तीर्थम, कपित थे ने कल्पवासी स्त्रिया, उनके 103 प्रकृतियां बंध योग्य है। सौधर्म ईशान स्वर्ग वालों के तीर्थंकर का बंध होता है, इससे 104 प्रकृतियां बंध योग्य कही है। सनत कुमार आदि सहस्रार स्वर्ग पर्यंत एकेंद्रिय स्थावर तथा आताप का बंधन न होने से 101 बंधे योग्य है। ऊपर तो ये चार भी नहीं बंधेगी तीर्थ तीर्यन संबंधी आनत प्राण तारण अच्युत तथा नव ग्रहवेकों में तीर्यंच गति तीर्यंच गत्यानुपूर्वी तीर्यंच आयु उद्योत इन शतार चतुष्क प्रकृतियों का बंधन न होने से अब 101 में से वो चार गई तो 97 प्रकृतियों को बंध योग्य कहा है। हाँ फिर बोलो आप क्या बोलते जरा फिर से दोबारा बोलो। किस में कौन सी प्रकृति के बारे में जो बनती है उसके बारे में बंधक अबंधक की चर्चा होती है। आप क्या कह रहे देखो आनत प्राणत में गुणस्थान पहले गिनाओ। हाँ अभी बंध विषय बताओ जैसे ज्ञानावरण का जो दंडक है जो चौथे तक बंधने वाली है उसके बंधक सभी है कहेंगे और वो बीच वाले चार सहनन वाले पहले और दूसरे गुणस्थान वाले बंधक कहेंगे। हाँ बाकी एक वाला तो पहले में कहेंगे ख्याल में नव अनुदिश तथा पंच अनुत्तर विमानों में सम्यक जीव ही उत्पन्न होते। अब यहाँ जो बंधने वाली वो सारे बंधक है अबंधक नहीं है ऐसा ये यहाँ कह सकते हैं क्योंकि वहाँ गुणस्थान एक ही है। ये कल हमने इसकी चर्चा की थी अपने जो लिखा है उसके आधार से अतः उनके अविरत सम्यक्ति के बंध योग्य 72 प्रकृतियां कही गई है। बंध विचय स्वामित्व में कितने प्रकृतियां बनती उसकी चर्चा नहीं थी परंतु उसके साथ इसको पढ़ेंगे तो हमारा क्लैरिटी और बढ़ेगी इसलिए इसको ले रहे। हाँ
हाँ शतार चतुष्क में तीर्यन जगति तीर्यन जगत्यानुपूर्व ये लेना है।
हाँ तीर्यन और उद्योत उद्योत को भी लेना ये सदर क्योंकि वो शतार सहस्रार तक ही बनती है इसलिए उसका नाम सदर चौक है। ये शतार है नहीं सदर शतार चतुष्क उन्होंने संस्कृत में कहा और सदर चौक का हम प्राकृत में कहते हैं। हाँ सदर चौक का प्राकृत शब्द है और शतार चतुष्क का ये संस्कृत हो गया। हाँ आगे पढ़े हम नीचे से दूसरी लाइन पेज नंबर 50 पर निवृत्ति अपर्याप्तक भवनत्रिक निवृत्ति अपर्याप्तक भवनत्रिक का अर्थ होता है उनमें तो लब्धि पर्याप्त होते ही नहीं है तो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में हाँ कल्पवासिनियों में तीर्यंचायु तथा उनके गुणस्थान कौन से हो गए। अरे पहला और दूसरा दोनों हो गए निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में दूसरे गुणस्थान के साथ वहां जा सकते हैं। तीर्यंचायु तथा मनुष्यायु का बंधन न होने से समझ में ना निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कोई भी देव तो बंधन नहीं करेगा अन्य भी कोई नहीं करेगा। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंधन नहीं होता इसलिए वहां 101 बंध योग्य है। यहाँ मिथ्यात्व तथा सासाधन गुणस्थान होते हैं है ना। सम्यक्त्वी जीव की उत्पत्ति भवनत्रिक तथा देवांगनाओं में नहीं होती इससे यहाँ पूर्वोक्त दो गुणस्थान होते हैं। सौधर्मेंद्र की इंद्राणी की पर्याय में भी सम्यक्त्वी का उत्पाद नहीं होता ये कहने की जरूरत क्या पड़ी क्योंकि वो तो अभी वहां से मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाले हैं तो सम्यक तो उन्होंने बाद में वहां प्राप्त किया है क्योंकि किसी भी स्त्री पर्याय में जन्म के यानी वो तो सम्यक के साथ वहां जन्म होता ही नहीं है। जन्म धारण के पश्चात पर्याप्त अवस्था में सम्यक तो उत्पत्ति का निषेध नहीं है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने से क्योंकि सम्यक्त्व के साथ तीर्थंकर प्रकृति यहाँ से बांधकर वहां उत्पन्न हुआ है वहां बंध योग्य 102 प्रकृतियां कही गई है। सनत कुमार आदि सहस्रार स्वर्ग पर्यंत निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मनुष्यायु तथा तिर्यंचायु का बंध न होने से, क्योंकि आयु बनती नहीं उस अवस्था में, 99 प्रकृतियों का बंध होता है। उनके पर्याप्त अवस्था में 101 का बंध कहा था, उसमें से उक्त दो प्रकृतियां यहां घट जाती हैं। आनतादि स्वर्गों तथा नवग्रवेकों में पर्याप्त अवस्था में 97 का बंध होता था, उसमें से मनुष्यायु को घटाने से 96 का बंध निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में कहा गया है। 9 अनुदिश तथा 5 अनुत्तर विमानों में पूर्वोक्त 72 प्रकृतियों में से मनुष्यायु को बंध के अयोग्य होने से, निवृत्ति पर्याप्त की बात चल रही है, घटाने पर निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 71 का बंध कहा गया है। सौधर्मादि 9 ग्रवेक पर्यंत निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व सासादन तथा असंयत, वो मैं निकाल दो, 3 गुणस्थान होते हैं ब्रह्म, असंयत में नहीं गए, असंयत करो, वो नरक गति लिखा है ना, वहां से दूसरी लाइन ऊपर नीचे नीचे आओ, बोल्ड में नरक गति लिखा है, उसके ऊपर की सेकंड लाइन ऊपर असंयत में लिखा है ना, शुरुआत में असंयत में लिखा है, वो असंयत लिखो फक्त, असंयत 3 गुणस्थान होते हैं, मैं लिखा है ना उसके ऊपर, मैं नहीं चाहिए। हाँ, आगे सम्यक जीव का ही उत्पाद होने से 4th गुणस्थान कहा है, यहां तक हमने देख लिया। अब नरक गति, वैसे नरक गति और तिर्यंच गति का उन्होंने बताया था वहां पर, फिर भी यहां कर्मकांड के आधार से बताना है तो उसको भी ले लिया। यहां मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध विच्छित्ति वाली 16 प्रकृतियों में से 4 ही बनती है ना यहाँ पर, हाँ, मिथ्यात्व हुंडक संस्थान नपुसक वेद तथा असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन को छोड़कर शेष 12 प्रकृतियों को बंध के अयोग्य कहा है। इन 12 प्रकृतियों के सिवाय और क्या नहीं बंधेगी, तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग, देवायु तथा आहार द्विक, नरक को क्यों छोड़ा, नरक गति द्विक भी छोड़ना चाहिए था, इन 7 प्रकृतियों का भी बंध नहीं होने से 19 प्रकृतियों को 120 में घटाने से 101 का बंध कहा गया है। हाँ नहीं नहीं, वो तो नरक ही तो पहले गुणस्थान के 16 में से उन्होंने घटा दिया, वहीं पर वो एकेंद्रिय सावर आतव सूक्ष्म वो सारे पहले घटा दिया उन्होंने। अरे पर वो बनती नहीं है, नारकियों को नरगति बनती नहीं है, वो कहाँ लिया, मिथ्या तो दंडक में से ही निकाल दिया उसको। यहाँ प्रथम से 4th गुणस्थान पर्यंत 4 गुणस्थान कहे गए हैं। चौथे 5वें 6ठे तथा 7वें नरकों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, तो 4थी 5वीं तथा 6ठी पृथ्वी में 100 प्रकृति बंध योग्य कही है। 7वीं पृथ्वी में मनुष्यायु का बंध नहीं है, वहां से निकलकर जीव पशु पर्याय को ही प्राप्त करता है, अतः 7वीं पृथ्वी में 99 प्रकृतियों को बंध योग्य, कितनी बनती है उसकी बात है, फिर उसमें से स्वामित्व कौन से गुणस्थान वाले को होता है उसकी चर्चा करेंगे। पहली पृथ्वी में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मनुष्यायु तथा तिर्यंचायु का अभाव होने से, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त में किसी का बंध आयु का बंध नहीं होता, तो पहले हमने 101 बंध योग्य देखी थी, उसमें से 2 गए, 99 को बंध योग्य कहा। यहाँ मिथ्यात्वादी 4 गुणस्थान लिखे वो बराबर नहीं है, मिथ्याद और असंयत दो ही गुणस्थान होते हैं, क्योंकि सासाधन वाला मरकर नरक में नहीं जाता, इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था पहले नरक में पहला और चौथा गुणस्थान होगा, और नीचे के नरकों में मात्र पहला ही गुणस्थान होगा। ख्याल में आती बात ये? ये मिथ्यात्वादी चार लिखा है ना, तो मिथ्यात्व और असंयत दो ही गुणस्थान होते हैं, ऐसा लिखो। मैंने पूरा मिथ्यात्वादी चार शब्द निकाल दो, दोनों दो शब्द निकालो और वहां लिखो मिथ्यात्व और असंयत, ये दो ही अन्यत्र निवृत्ति अपर्यास में पहला दूसरा चौथा होता है। अब पहला नरक है तो क्षायिक के साथ या कृतकृत्य वेदक के साथ जाने वाले को चौथा होगा, सासाधन वाला मरकर नरक में जाता ही नहीं है, और पहला तो जाता ही जाता है। दूसरे नरक से छठे नरक पर्यंत अपर्याप्त अवस्था में केवल मिथ्या तो गुणस्थान होता है, वहां तीर्थंकर, मनुष्यायु तथा तिर्यंचायु इन तीन प्रकृतियों का बंध न होने से 101 में से तीन गए, 98 को बंध योग्य कहा है, क्योंकि वहां उत्पन्न होने के समय में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पर्याप्त होते उनको सम्यक तो होता है और तीर्थंकर प्रकृति बांधते दूसरे तीसरे वाले, इसलिए वो भी दूसरे और तीसरे नरक वाले मिथ्या तो में ही जन्मे हैं, भले वो तीर्थंकर की सत्ता वाले भी क्यों ना हो। और निवृत्ति पर्याप्त हो जाते हैं तो वो सम्यक दृष्टि होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, इसलिए यहां उसको पहले गुणस्थान वाला है तीर्थंकर का बंध नहीं करने वाला लिया, तो उनकी पोजीशन छठे नरक के जीवों के समान ही हो जाती है। सातवें नरक वाले को छोड़ा क्योंकि वो तो मनुष्य गति वगैरह को भी नहीं बांधेगा। हाँ, सातवें नरक में अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या तो गुणस्थान होता है, वहां अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी तथा उच्च गोत्र का बंधन न होने से उसमें से 95 प्रकृतियों को बंध योग्य कहा है, क्योंकि वो तो पर्याप्त होने पर जब सम्यक दृष्टि हो जाएगा तब मनुष्य गति का बंध कर सकता है, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी उच्च गोत्र, तब तक नहीं। तिर्यंच गति, इसका भी हमने बंध स्वामित्व विषय देखा था, यहाँ तो पांच ही गुणस्थान है और हमने देखा तो ज्ञानावरण दंडक है वो पहले से पांचवे तक बनते हैं, इस तरह से स्थान वृद्धि दंडक है पहले दूसरे गुणस्थान वाले बंधेंगे, फिर अप्रत्याख्यान वाले पहले से चौथे वाले तक बंधेंगे, इस तरह से हमने वहां देखा था। अब यहाँ देखते तिर्यंच गति, तिर्यंचों के अभी उसके भेद कितने हैं, सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये पर्याप्त तिर्यंच लिखा है ना, वहां पंचेंद्रिय पर्याप्त करना चाहिए, क्योंकि केवल पर्याप्त तिर्यंच कहेंगे तो एकेंद्रिय भी पर्याप्त होते हैं, उसकी बात नहीं है, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच तथा योनिमत तिर्यंच, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, ऐसा उसका पूरा नाम है, क्योंकि पंचेंद्रियों में ही योनिमति होगी। ये जो चार भेद कहे हैं, वैसे तो पांचवा भेद है पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त, परंतु ये चार भेदों की पहले चर्चा की, उनके पांच गुणस्थान होते हैं, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तों में एक ही गुणस्थान है, इसलिए इन चारों भेदों में गुणस्थान पांचों, तिर्यंचों में तीर्थंकर तथा आहारद्विक इन प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से 117 का बंध होता है। मनुष्य गति के समान तिर्यंचों में भी वज्रषभ नाराज सहनन औदारिक द्विक मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी तथा मनुष्यायु की बंध विच्छित्ति अविरत के बदले में सासाधन गुणस्थान में होती है, यानी उनको भी उसके बंधक कौन है तो पहले दूसरे गुणस्थान वाले बंधक है, ऐसा कहेंगे हम। अब 52 पेज पर आते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त तिर्यंचों में चार आयु तथा नरक द्विक का बंध अभाव होने से, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध होता नहीं है निवृत्ति अपर्याप्त में, और नरक द्विक भी नहीं बनती है। आप कहेंगे देवगति को क्यों लिया नहीं यहाँ पर, कि भोग भूमि के जो सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि है अपर्याप्त अवस्था में, वो देवगति का बंध करेंगे। इसलिए यहाँ देवगति को वैकिरिक को छोड़ा। तो कहते निवृत्ति अपर्याप्त तीर्यंचों में चार आयु तथा नरकद्विक का बंध अभाव होने से बंध योग्य 111 प्रकृतियां हैं। इनके मिथ्यात्व सासादन तथा असंयत ये तीन गुणस्थान होते हैं। असंयत किसके होगा? भोग भूमि के समय दृष्टि को, शायिक शायिक कहो कृतकृत्य वेदक कहो। लब्धि अपर्याप्त तीर्यंचों में ये पांचवा भेद तीर्यंच गति का, नरकायु देवायु तथा वैकिरिक षटक का बंधन न होने से 109 का बंध होता है। यह मिथ्यात्व गुणस्थान का सद्भाव, एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही है। तो बंध स्वामित्व विषय में कहेंगे इनके बंधक सभी बंधक है, अबंधक नहीं है। अब इंद्रिय मार्गणा पर्याप्त एक इंद्रिय तथा विकलेन्द्रियों में तीर्थंकर आहारक द्विक देवायु नरकायु तथा वैकिरिक षटक इन एकादश प्रकृतियों का बंध न होने से 109 प्रकृतियों का बंध कहा है। इनके प्रथम और द्वितीय गुणस्थान होते हैं। देखो ये दो मान्यता है, दूसरे गुणस्थान में मरकर कोई जो पर्याप्त एक इंद्रिय विकिरेंद्रिय में जन्म लेता है और वो पहले शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले पहले वो मिथ्यात्व में चला जाता है, ये एक मान्यता है। वहां तो उसका स्वीकार था, महाबंध में उसका स्वीकार नहीं है। महाबंध में तो आगे चलकर हमने देखा था कि एक इंद्रिय में जाने वाला उसके मारणांतिक में सासाधन हो सकता है, पर जो वहां पहुंच जाता है जन्म लेता है तो वो मिथ्यात्व में ही जन्म लेता है, ये महाबंध की मान्यता है। फिर भी दूसरे मान्यता चलती है, इसलिए यहाँ ये अपर्याप्त अवस्था में जो पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं उनके सासाधन गुणस्थान वहां लिया है, वो प्राप्त नहीं करते। उन सासाधन में मरकर इन पर्याय में उत्पन्न होने की बात आती है, क्योंकि आपको याद होगा उदय की विच्छित्ति दो प्रकार से कही है, पहले दो गुणस्थान की याद है? हाँ बोलो बोलो, आप जरा गिनाओ प्रकृतियां गिनाओ, आपके पास माइक है ना। पहले गुणस्थान की उदय विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति, मिथ्यात्व,
कुंडक संस्थान,
अरे कुंडक संस्थान तो 13वें तक है। हाँ
मिथ्यात्व,
एकेंद्रिय नहीं, दो मत है ना, पांच तो दोनों को मान्य है, उसके बाद बताओ।
साधारण
मिथ्यात्व, सूक्ष्म साधारण और आतक, और दूसरे गुणस्थान में अनंत अनुबंधी चार, और फिर एक इंद्रिय स्थावर और द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, नौ पांच या पहले यहां लेते हैं उसको दस और चार, ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहां उनको उन्होंने ले लिया है। परंतु महाबंध में तो वो सभी पहले गुणस्थान में ही उदय विच्छित्ति बताई है, कौन सी? वो मिथ्यात्वादी देखे हमने, और एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय सभी प्रकृतियां उसके उदय की विच्छित्ति। हाँ ये दूसरा गुणस्थान क्यों लिखा उसका कारण हमने देखा, परंतु महाबंध के अनुसार एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय में एक पहला ही गुणस्थान होगा। ख्याल में आई ना बात क्यों? एक पहला ही गुणस्थान है एक इंद्रिय और विकलेंद्रियों में, यानी दूसरा गुणस्थान नहीं है। यानी महाबंध में वो मान्य नहीं है, दो मत चले आए ना। अब पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में 14 गुणस्थान कहे गए हैं। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा वो भेद बता रहे। अभी पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तकों में, अब पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक होगा तो गुणस्थान पहला, उसमें भी निवृत्ति अपर्याप्तकों में जैसे वो तो पंचेंद्रियों में तो निवृत्ति अपर्याप्त में तो साधन के साथ भी आ जाएगा, चौथे के साथ भी आएगा, आहार द्विक नरक द्विक तथा आयु चतुष्टय, इस प्रकार आठ प्रकृतियों का बंध नहीं होने से 112 का बंध कहा है। इनके पहला दूसरा चौथा छठवां तथा तेरहवां गुणस्थान तो है, वो निवृत्ति अपर्याप्त है ना। छठे में कैसे लेना, आहार संबंधी निवृत्ति अपर्याप्त। आहार मिश्र काय योग अवस्था में जीव निवृत्ति अपर्याप्त होता है, उस समय प्रमत्त संयत अवस्था पाई जाती है। और केवली भगवान के समुद्घात काल में औदारिक मिश्र काय के समय यानी कपाट अवस्था जिसको कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था पाई जाती है। लब्धि अपर्याप्तक पंचेंद्रियों में तीर्थंकर आहारक द्विक देवायु नरकायु वैकृत षटक इन 11 प्रकृतियों को छोड़कर 109 का बंध बताया गया है। गुणस्थान प्रथम ही होता है। काय मार्गणा, पृथ्वी काय जल काय वनस्पति काय वाले जीवों में मिथ्यात्व संसाधन गुणस्थान होते हैं, इनके 109 प्रकृतियों का बंध होता है। ऊपर जैसे हमने देखा ना दूसरा गुणस्थान कैसे, क्योंकि पृथ्वी काय जल काय और वनस्पति काय वाले जो पर्याप्त जीव है बादर पर्याप्त, उनमें साधन के साथ उत्पन्न होने का एक मत है, उसकी अपेक्षा से यहाँ लिया है, तो यहाँ महाबंध में मान्य नहीं है। आगे अग्नि काय को वायु काय को में मनुष्य द्विक उच्च गोत्र तथा मनुष्यायु का बंधन न होने से 105 का बंध है। गुणस्थान मिथ्यात्व ही होता है। गोमरसार कर्मकांड में लिखा है, नहीं सासनो अपुण्य साहारण सुहमगेय तेउदुगे, यानी सासाधन गुणस्थान कहाँ नहीं होता, अपुण्य ने अपर्याप्तकों में नहीं होता है, साधारण में नहीं होता, सूक्ष्म में नहीं होता, और तेज द्विक यानी तेज का एक और वायु का एक में नहीं होता। लब्धि अपर्याप्त को साधारण वनस्पति काय को संपूर्ण सूक्ष्म स्थावर जीव में यानी पांचों प्रकार के सूक्ष्म में तथा तेज कायिक वायु कायिकों में सासाधन गुणस्थान नहीं होता है। नारकी जीवों में भी अपर्याप्त अवस्था में सासाधन का अभाव है, क्योंकि सासाधन वाला मरकर नरक में नहीं जा सकता, अन्य तीन गति में जा सकता है मरकर। अब योग मार्गणा, इनमें हमने बंध स्वामित्व विचय सबको देख लिए थे। असत्य मन तथा असत्य वचन योग, उभय मन तथा वचन योगों में, उभय मन एंड उभय वचन योगों में मिथ्यात्व से आदि शब्द निकाल दो, से शब्द लाने ना, मिथ्यात्व से एक क्षीण कषाय पर्यंत 12 गुणस्थान पाए जाते हैं। एक्चुअली असत्य मन तथा असत्य वचन, उभय मन तथा वचन योगों में देखो, सत्य तथा उभय जो है ना, बरोबर है, मिथ्यात्व से क्षीण कषाय पर्यंत करो या मिथ्यात्व आदि क्षीण कषाय पर्यंत लिखो, से भी लिखो और आदि भी लिखो, ये अच्छा नहीं है, यानी इसलिए हमने आदि निकाल दिया था। देखो क्या कहते, ये असत्य और उभय केवली को नहीं होगा। हाँ, इसलिए वो सत्य मन सत्य वचन तथा अनुभय मन और अनुभय वचन में सहयोगी जिन पर्यंत त्रयोदश गुणस्थान कहे गए यानी वो 1 से 13 है। औदारिक का योग में त्रयोदश गुणस्थान कहे गए हैं, परंतु ये कहीं पर भी हो 13 वर्ण भी क्यों ना हो, हमारा बंध विचय स्वामित्व क्या था, ज्ञानावरण दंडक, वो तो 10वें तक सारे है, तो ये इनमें भी घटित होता है। और वो 11वें 12वें में हो या 13वें में, वो जो योग नहीं होता है उसमें तो सातावेदनीय बंद ही रहा है सब में, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, सातावेदनीय के बारे में कहेंगे हम, असत्य मन वाले को कहाँ तक बनता है, तो 12वें तक बनता है, इस तरह कहेंगे। हमने योग में उन्होंने बताया था क्या, हमने लिखा है, हमने लिखा योग मार्गणा में। देखो, हमको उसमें विशेषता यह है कि हमने 5 मनोयोगी वचन योगी और काय योगियों को देखा था, हमारे पेज नंबर 2 में वो त्रुटि तंश वाला है ना, यानी ऐसा ही लिखा है ना, अभी उसमें कुछ बदली करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा था, अभी यहाँ पर असत्य कहाँ तक है, 12वें तक है, तो उसमें सातावेदनीय का अबंधक नहीं है, कहते हैं उनमें भी घटित होगा, होगा ना, उनमें अबंधक नहीं है क्योंकि उनके गुणस्थान 12वें तक है, सारे बंधक है, और जो सत्य और अनुभव के लिए 13वें तक है बंधक, उनमें अबंधक नहीं है, यानी सभी के लिए ये लागू होता है, कथन तो लागू होता है, गुणस्थान उनके 12वें तक है और किसी के 13वें तक है, परंतु कथन क्या है, सातावेदनीय के सभी बंधक है। ये हो गया, पेज नंबर 52 पर चल रहा है, अभी नीचे औदारिक काय योग में त्रयोदश गुणस्थान कहे गए हैं, मनुष्य गति के समान वर्णन जानना चाहिए, जो क्योंकि मनुष्यों में औदारिक का योग है ना, तो वहां पर सब वर्णन होगा। औदारिक मिश्र का योग में आहारक द्विक, नरक द्विक, नरकायु और देवायु, इन 6 प्रकृतियों के बिना 114 का बंध होता है। यह मिथ्यात्व, सांसाधन, असंयत और सहयोगी जिन ये गुणस्थान पाए जाते हैं, ये अभी अभी हमने आज ही इसकी बात चर्चा की थी, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र भी देखा था। वैक्रिय कायोग में सौधर्म ईशान स्वर्ग के समान 104 प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि इसमें निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था नहीं लेना है हमको, तो यहाँ तो चारों ही गुणस्थान, हमारे बंध विषय में क्या कहेंगे, 4 गुणस्थान, तो 4थे गुणस्थान में बनने वाली प्रकृतियां पहले से 4थे तक बनती है, यानी सभी वैकृत कायोग वाले उसके बंधक ऐसा कहेंगे हम। वैकृत मिश्र कायोग में अब ये निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, मनुष्यायु तथा तिर्यंचायु का बंधन न होने से 102 प्रकृतियों का बंध होता है। यहां मिथ्यात्व, सांसाधन तथा असंयत गुणस्थान होते हैं, क्योंकि वो पहले दूसरे या चौथे के साथ मरकर देव में आया, ऐसा हो सकता है। वैकृत मिश्र कहने से नरक पहले नरक में भी ले सकते हैं हम 4था गुणस्थान, परंतु वहां सांसाधन नहीं लेना, पर यहाँ इन जनरल ना वैकृत मिश्र, देव हो तो देव, नारकी हो तो नारकी। आहारक का योग में 6ठा गुणस्थान होता है, यहाँ 63 प्रकृतियों का बंध होता है। आहारक मिश्र योग में देवायु का बंध नहीं होने से 62 का बंध होता है। उसमें हमने क्या कैसे देखा था, यहाँ जो बंधने वाली है सारे बंधक हैं, अबंधक कोई नहीं, बस इतना ही हमको कहना है। बंध विषय में तो इतना ही कहना है। कारमान काय योग में ये भी अभी अभी हमने देखा था, प्रथम द्वितीय चतुर्थ तथा त्रयोदशम गुणस्थान पाए जाते हैं, यानी तेरवा। यहाँ औदारिक मिश्र काय योग संबंधी 114 प्रकृतियों में से मनुष्यायु तथा तिर्यंचायु घटाने पर 112 का बंध होता है। देखो औदारिक मिश्र का योग वाला लब्धि अपर्याप्त जीव तो आयु का बंध कर सकता है, हाँ, परंतु कारमान योग में तो का योग में तो कोई नहीं आयु का बंध करेगा। अब वेद मार्गणा, तीनों वेदों में प्रथम से नवम गुणस्थान पर्यंत गुणस्थान होते हैं। यहाँ तीनों वेदों में 120 प्रकृतियां बंध योग्य कही गई है। स्त्री वेदी के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, स्त्री वेदी है तो सारे पर्याप्त नाम कर्म वाले ही है, तो जब तक निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है तो प्रथम तथा द्वितीय गुणस्थान कहे गए, क्योंकि चौथे गुणस्थान के साथ कोई स्त्री वेदी में उत्पन्न नहीं होगा। ये जो बाद में पर्याप्त होने पर सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, तो स्त्री वेदी के गुणस्थान तो हम 90 तक गिनेंगे, परंतु निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पहला दूसरा गुणस्थान है। यहाँ चार आयु, तीर्थंकर, आहारक द्विक, वैकिरेक षटक, इन 13 प्रकृतियों को छोड़कर 107 का बंध होता है। नपुसक वेदी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व, सासादन तथा असंयत गुणस्थान कहे गए, ये कौन सा होगा? पहला नरक, हाँ, सम्यक्तों के साथ पहले नरक में जाने वाला लेना, अन्यथा नपुसक वेद में भी नहीं जन्मता है। यहाँ चार आयु, आहारक द्विक, वैकिरेक षटक, इन द्वादश प्रकृतियों के बिना 108 का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जब नरक में जाता है तब उसके अपर्याप्तक दशा में तीर्थंकर का बंध होने से यहाँ 108 का बंध कहा है। ऐसा स्त्री वेदी में नहीं होता, क्योंकि नपुसक वेद में तो उत्पन्न हो सकता है पहले नरक में, पर स्त्री वेद में कोई उत्पन्न नहीं होगा। सम्यक्त्व जीव प्रथम नरक तो जाता है और वहां नपुसक वेदी होता है, किंतु वह स्त्री वेदी नहीं होता। पुरुष वेदी के 120 प्रकृतियों का बंध होता है। ये निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है ना, यानी केवल वो स्त्री वेदी है तो कितनी प्रकृतियां बंध योग्य होगी? मात्र स्त्री वेदी पर्याप्त जीव है, सभी होगी ना। सामान्य से स्त्री वेदी जीव को सभी प्रकृतियां होगी, हाँ। और यहाँ बात किसकी हो रही है? निवृत्ति अपर्याप्त स्त्री वेदी, निवृत्ति अपर्याप्त नपुसक वेदी, और अब निवृत्ति अपर्याप्त पुरुष वेदी लेना। तो निवृत्ति अपर्याप्त पुरुष वेदी में पहला दूसरा चौथा भी गुणस्थान तो होता ही होता है, हाँ। तो पुरुष वेदी के 120 प्रकृतियों का बंध होता है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में उसके आहारक द्विक, नरक द्विक तथा चार आयु को छोड़कर 112 का बंध होता है। निवृत्ति अपर्याप्त सामान्य से तो 120 तो सभी वेदियों को होता है, तो निवृत्ति अपर्याप्त की बात है। कषाय मार्गणा, यहां तक तो हमारी बात हुई थी, अब कषाय मार्गणा को भी यहीं से पढ़ते फिर हम अपनी पुस्तक में जाएंगे बंध विचय में। कषाय मार्गणा देखी लाइने, यहां 1 से 10 पर्यंत गुणस्थान कहे गए हैं, यहां बंध 120 प्रकृतियों का होता है। पर कषाय मार्गणा के जो भेद है ना, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, वो 90 गुणस्थान तक, और लोभ कषाय 10वें तक है। और अकशाई भी ऊपर कहने पड़ेंगे। क्रोध मान माया है वो तो नौ तक। अब अपने जो लिखवाया है ना उसमें से निकालना, कषाय मार्गणा निकालना है, क्योंकि हमको उसके बंद स्वामी विषय जो देखना है उसकी अपेक्षा से हमको बात करनी है। पेज नंबर 4 था। देखो कषाय मार्गणा में मिला क्रोध कषाय जीवों में। अभी नवे गुणस्थान तक वो ज्ञानावरण दंडक वहां तक कहेंगे हम। 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण, 7 वेदनीय, 4 संज्वलन, यश कीर्ति, उच्च गोत्र, 5 अंतराय के, मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के उपशमक शपक तक बंधक है, अबंधक कोई नहीं है। शेष सभी प्रकृतियों की प्ररूपणा उग के समान है। यानी जैसे पुरुष वेद के बंधक कौन है तो नवे के पहले भाग तक, 1 से 9 तक, परंतु उसमें ऊपर की लिस्ट में उसको नहीं लिया। क्यों? क्योंकि क्रोध कषाय होते हुए पुरुष का वेद का बंध रुक भी सकता ना, अपगत वेदी होने पर भी क्रोध कषाय चल रहा था, इसलिए उस लिस्ट में पुरुष वेद को नहीं लिया यहाँ पर। यानी क्रोध कषाय के अंतिम समय तक जो बनती है उसको इसमें ले लिया। समझ में आती है बात? पुरुष वेद को अलग से कहना पड़ेगा कि उसके बंधक कौन है, पहले से नवे के प्रथम भाग तक, और क्रोध का उदय तो उदय और बंध तो दूसरे भाग तक है। यानी क्रोध कषाई जीव अंतर्मूर्त और आगे तक है, वहां पुरुष वेद नहीं बन रहा था। तो इसमें कहना पड़ेगा पुरुष वेद के बंधक वो अनिवृत्तिकरण के पहले भाग तक है, और उसके आगे वाला शेष जो जीव है ना दूसरे भाग वाले वो अबंधक है, ऐसा कहना पड़ेगा। समझ में ही बाकी बाकी तो हमने देखा स्यान वृद्धि के वो पहले दूसरे गुणस्थान वाले बंधक है, बाकी अबंधक है। मिथ्यात्व दंडक वाले पहले गुणस्थान वाले बंधक है, बाकी अबंधक है। वो बाकी तो ओके समान है, क्योंकि सभी क्रोध मान माया लोभ तो पूरे ही चारों गति सर्वत्र तो होते ही होते हैं, तो बाकी प्रकृतियों की प्ररूपणा तो ऐसे ही होगी। इसे तीर्थंकर के 4थे 5वे 6थे 7वे 8वे गुणस्थान तक बंधक है, शेष अबंधक है, यानी ऊपर और नीचे के गुणस्थान वाले। देखो मान कषाय और माया कषाय जीवों में इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि यहाँ क्रमशः 3 संज्वलन और 2 संज्वलन कहना चाहिए। यानी 3 संज्वलन के वो ऊपर 4 संज्वलन लिखा था, यहाँ कहेंगे 3 संज्वलन के सभी बंधक है मान के लिए, और फिर उसके लिए क्रोध के बंधक कौन है तो दूसरे भाग तक बंधक है, आगे वाले अबंधक, ऐसा कहना पड़ेगा। माया कषाय के बारे में क्या कहेंगे, पहले गुणस्थान से वहां तक ये 2 के बंधक है, अबंधक नहीं है कहना पड़ेगा। अब लोभ कषाय में, लोभ कषाय तो 10वे तक है, तो लोभ कषाय जीवों में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण। अब यहाँ 4 लिए, ऊपर तो हमने 6 लिए थे, उसमें से एक्चुअली यहाँ पर भी 4 ही लेना पड़ता है ना,
ऊपर भी
4 ही लेना पड़ेगा, ऊपर भी 4 लेना पड़ेगा, और फिर उसमें से हाँ निद्रा प्रचला का अलग से बताना पड़ेगा। ओके समान वो 4 करो, 6 के बदले 4 करना। कषाय मार्गणा में जो है ना, हाँ 4 दर्शनावरण करो। निद्रा प्रचला का तो ओके समान होगा 8वे के पहले भाग तक। हाँ अब यहाँ 5 ज्ञानावरण लोभ कषाय में, 4 दर्शनावरण, 7 वेदनीय, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र और पांच अंतरा है, इसमें संजवलन ने मोहनीय नहीं लेना है के मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक उपशमक और क्षपक तक बंधक है अबंधक नहीं है, शेष प्ररूपना उग के समान है। शेष प्ररूपना निस्थान गुद्धि दंडक है, निद्रा प्रचला वाला है, मिथ्या तो दंडक है, बाकी सब ऐसा ही है। आहारक है, तीर्थंकर है, जो जहां बनती है वैसे समझना। अब ज्ञान मार्गणा की बात पढ़ेंगे हम। पहले ज्ञान मार्गणा वहां से पढ़ लेते हैं। 53 नंबर का पेज है ना, उन्होंने क्या कहा है संपादक जी ने, वो कर्मकांड के आधार से लिखा। देखिए पेज नंबर 53 महाबंधक पुस्तक पहली ज्ञान मार्गणा में कुमति कुशुत तथा कु अवधि ज्ञानों में तीर्थंकर तथा आहारक द्वीप को छोड़कर 117 का बंध होता है। यह मिथ्यात्व तथा सासाधन गुणस्थान कहे गए, पहले दो गुणस्थान। सुमति सुश्रुत तथा सुअवधि ज्ञानों में चौथे से बारहवें पर्यंत गुणस्थान होते हैं। यहाँ बंध योग्य 79 प्रकृतियां कही गई है, क्योंकि पहले दो गुणस्थानों में जो विच्छित्ति हो गई है उसकी बात यहाँ नहीं करना। मन परे ज्ञान में प्रमत्त संयत से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत गुणस्थान है, यहाँ 65 प्रकृतियां कही गई है। मन परे ज्ञान में यही फिर रूपित हो गया है, प्रमत्त संयत से क्षीण कषाय पर्यंत गुणस्थान है, यहाँ 65 प्रकृतियों का बंध होता है। यहाँ आहारक द्विक का भी बंध होता है, क्योंकि उसका उदय है उसका विरोध है, बंद होने में कोई रुकावट नहीं। मनपरे ज्ञानी के आहारक द्विक के उदय का विरोध है। केवल ज्ञान में संयोग केवली अयोग केवली गुणस्थान पाए जाते हैं। संयोग केवली के केवल सांतावेदनीय का बंध होता है, अयोगी जन के बंध का अभाव है। ये तो ज्ञान मार्गणा में हमने वहां से पढ़ा, भी यहां से पढ़ते हैं। देखो अपने पुस्तक में आना, यहाँ बंध विचय स्वामित्व की प्ररूपना है, उसके अनुसार देखेंगे। हमने कषाय मार्गणा की बात पढ़ी थी ना, ये भी उसमें जरा करेक्शन करना है। एक पेज नंबर 4 अपना वो पुस्तक का वो उसमें देखो कषाय मार्गणा में था ना, 4 नंबर का पेज, क्रोध कषाय जीव में 5 ज्ञानावरण के बाद 4 दर्शनावरण होने चाहिए, 6 के बदले 4। हाँ वो कषाय मार्गणा में अकषाय जीवों में देखो सातावेदनीय के उपशांत कषाय क्षीण कषाय संयोग केवली बंधक है, शेष अबंधक है। ये तो हो गया, हमने ज्ञान मार्गणा भी महाबंध में से देखी थी, अब यहाँ पढ़ लेते हैं। ज्ञान मार्गणा में हाँ यानी 11वां 12वां 13वां ये बंधक है, पर 14वां गुणस्थान अकषाय है परंतु अबंधक है, क्योंकि वहां किसी का भी बंधन नहीं, कौन सी भी प्रकृति का। अकषाय के गुणस्थान कौन से है, 11, 12, 13, 14, उसमें सातावेदनी के बंधक कौन है, 11, 12, 13 वाले, शेष कहने से 14वें वाले अबंधक है, बस इतनी बात है। अब ज्ञान मार्गणा में मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी यानी श्रुत अज्ञानी और विभंग ज्ञानी जीवों में 5 ज्ञानावरण, अभी पहले 2 गुणस्थान है ना, ये 9 दर्शनावरण, 7 असाता वेदनीय, 16 कषाय, 8-9 कषाय, 3 आयु 3 गति। 3 आयु इसलिए लिया कि वो तो नरकायु को छोड़कर, ये प्रकृति ऐसी है कि दोनों ही गुणस्थानों में बंधने वाले। पंचेंद्रिय जाति, क्योंकि जिनकी विच्छित्ति पहले गुणस्थान में हुई है उन प्रकृतियों को छोड़कर यहां बातें कर रहे हैं। औदारिक वैक्रिक तेजस कारमान शरीर, 5 संस्थान औदारिक वैक्रिक अंगोपांग, पांच सहनन वर्ण चतुष्क तीन गत्यानु पूर्वी नारकी को छोड़ा अगुरु लघु चतुष्क दो विहाय गतिया त्रस चतुष्क स्थिरादि छह युगल निर्माण निज गोत्र उच्च गोत्र और पांच अंतराय के मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि बंधक है अबंधक नहीं है क्योंकि गुणस्थान दो ही है और ये दोनों ही गुणस्थान में बंधने वाली प्रकृतियां हैं जो यहाँ बनती नहीं उनका नाम लेने का जरूरत नहीं आहारद्विक और तीर्थंकर बनती नहीं है एक स्थानिक प्रकृतियों की प्ररूपना एक स्थानिक यानी मिथ्यात्व दंडक जो द्विस्थानिक कहते तो स्थान वृद्धि दंडक होता है प्ररूपना ओग के समान है ओग के समान है मिथ्या दृष्टि ही बंधक है बस यही उसका कौन सी देखो देखो मिथ्या दृष्टियों को क्या नहीं बनता है आहारद्विक और तीर्थंकर ये पढ़ लेते हैं ना कि दो पैराग्राफ है ज्ञान के अभिनिबोधिक ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में अभी अभिनिबोधिक ज्ञान तो चौथे से लेकर बारहवें तक सभी जीव आ गए ओघ के एक स्थानिक और द्विस्थानिक प्रकृतियों का बंध नहीं है क्योंकि वो समय दृष्टि है ना तो वो मिथ्यात्व दंडक और स्थान वृद्धि दंडक होते ही नहीं उनके शेष प्ररूप ना ओघ के समान है अभी ओघ के समान कैसे कहेंगे हम देखते अब चौथे से लेना पड़ेगा जैसे ज्ञानावरण का दंडक पहले से दसवें तक कहा था यहाँ चौथे से कहना पड़ेगा इतनी विशेषता है कि असंयत समय दृष्टि से कहना चाहिए लिखा है ना यहाँ पर इतनी विशेषता और है कि साता वेदनीय के असंयत समय दृष्टि से क्षीण कषाय तक बंधक है अबंधक नहीं है क्योंकि ओघ में तो चौदह गुण स्थान है और यहाँ तो अभिनिबोधिक ज्ञानी के बारहवें गुण स्थान तक ही गुण स्थान है मन पर ये सब इस बंध विषय के दृष्टि से उसको ये हमने नहीं लिखा लास्ट टाइम हमने नहीं लिखवाया था बाद में ये लिखा है हाँ मन पर ये ज्ञानियों में अभी गुणस्थान तो छठे से बारह है प्रमत्त संयत से क्षीण कषाय तक गुणस्थान है पांच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण यश कीर्ति उच्च गोत्र पांच अंतराय के प्रमत्त संयत से क्षीण कषाय उपशमक शपक तक बंधक है अबंधक नहीं है शेष प्ररूपणा ओग के समान है सर्वत्र प्रमत्त संयत से कहना चाहिए एक्चुअली यहाँ साता वेदनी यहीं पर क्षीण कषाय नहीं चाहिए क्षीण कषाय उसके गुणस्थान है ये सूक्ष्म सांप्राय चाहिए और इसी में हमको साता वेदनी भी डालना चाहिए क्षीण कषाय तक हाँ
और बाकी,
बाकी इसके अभिनिबोधिक ज्ञानी के समान बताना पड़ेगा फिर बाकी एक मिनट क्षीण कषाय के बदले सूक्ष्म सांप्राय हाँ क्योंकि उसका बंध वहां तक ही है ना सूक्ष्म सांप्राय उपशमक शपक तक बंधक है अबंधक नहीं है शेष प्ररूपणा ओक के समान है सर्वत्र प्रमत्त संयत से कहना चाहिए हाँ अबंधक हो गया हाँ सूक्ष्म सांप्राय शपक तक बंधक है शेष अबंधक है कहो नहीं नहीं शेष अबंधक है यानी मन पर ज्ञानी है ग्यारहवें बारहवें वाले अबंधक है ना शेष अबंधक है करो नहीं निकाल दो और शेष डालो देखो देखो तीसरी लाइन मन पर ज्ञानी की तीसरी लाइन शपक तक बंधक है लिखा ना शेष अबंधक है नहीं निकाल फिर से मन परे ज्ञानियों में प्रमत्त संयत से क्षीण कषाय तक गुणस्थान है। पहले में गुणस्थान बताए, उसमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र, पांच अंतराय के प्रमत्त संयत से सूक्ष्म सांप्राय उपशमक शपक तक बंधक है, शेष अबंधक है, अबंधक है, नहीं निकाल दो, है रखो, शेष प्रारूप ना ओक के समान है, परंतु प्रमत्त से जो जो असाता के लिए जैसे ऊपर लिखा है ना, साता वेदने के लिए उसमें अबंधक नहीं है कहना पड़ेगा, ओक के समान नहीं, ओक के समान ओग में फिर वो तेरवा गुणस्थान होता है। यहाँ लिखना एक शेष साता वेदनी के अलग से लिखना, साता वेदनीय के अभी जो हमने शेष अबंधक है गए ना, वहां डालो एक वाक्य, यहां लिखना साता वेदनीय के अभी है ना, सभी बंधक है अबंधक नहीं ऐसा कहना पड़ेगा, सभी बंधक है अबंधक नहीं है। असाता को भी लिखना पड़ेगा, असाता वेदनीय के छठे प्रमत्त संयत बंधक है, शेष अबंधक है। हाँ, असाता वेदनीय के प्रमत्त संयत ना ओग में पहले से लेना पड़ता है, प्रमत्त संयत बंधक है, शेष अबंधक है। बाकी आहार द्विक के बारे में तो सातवें आठवें वाले बंधक है तो हो जाता है, और तीर्थंकर के लिए भी सभी बंधक है कहना पड़ेगा, वो साता वेदनी के साथ तीर्थंकर डालो, साता वेदनी और तीर्थंकर के सभी बंधक है अबंधक नहीं है। तीर्थंकर का बंध करने वाले सभी हो गए ना, सभी को हो सकता है ना, कौन सा मन परे ज्ञानी सभी बंधक है, मन परे ज्ञानी के प्ररूप ना छठे से ही शुरू होती है, छठे से सभी नहीं, छठे से आठवें तक बंधक है, वो अलग से ही निकालना पड़ेगा, साता वेदनी के साथ मत डालो, आठवें तक बंधक है, हाँ शेष अबंधक है, ओग के समान है परंतु ओग में तीर्थंकर प्रकृति का चौथे से लेते, यहाँ तो गुणस्थान ही वो है, हाँ। आठवें तक बंधक है, शेष अबंधक है, आठवें तक बंधक है, शेष अबंधक है। छठा सातवा आठवा आठवें तक और केवल ज्ञानियों में साता वेदनीय के संयोग केवली बंधक है, शेष अबंधक, क्योंकि दो गुणस्थान है संयोग केवली अयोग केवली, उसमें से संयोग केवली बंधक है। अच्छा है, सब मिलकर फिर उसमें चर्चा हो जाती है ना, कल हम यहाँ से आगे इसमें और पांचवें भाग में संयम मार्गना लेनी है और अपना पुस्तक में 53 पेज पर आए थे हम, संयम मार्गणा, दोनों में संयम मार्गणा से शुरू करते हैं। कल की तारीख, ये सॉरी लेक्चर 12 होगा कल का, हाँ 12 है, आज 11वां हुआ। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। अश्विन भाई,
नमो भगवते, 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 नम